الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورہ قاف 26واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں خیالات بھی اٹھتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ، تو لکھنے والے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں جو لکھ رہے ہیں اس کے لیے. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو بھی بات اس کے منہ سے نکلتی ہے تو کوئی بات ایسی نہیں ہے مگر اس کے لیے ایک نگران حاضر باش تیار اس کو لکھنے کے لیے. یہ سورہ قاف کی آیات ہیں. اور جب میں نے آپ کے لیے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کیا ٹاپک پہ میں بات کروں گی، اور فلائر پہ بھی وہ لکھوایا تھا، تو وہ مختلف ایک ٹاپک تھا. لیکن پھر اس کے بعد جب میں یہاں پہ آئی تو ایک بہن نے مجھے روتے ہوئے کہا کہ پلیز آپ اس ٹاپک پہ ضرور بولیے جس کے میں آج آپ کے سامنے رکھوں گی، کہ انہوں نے کہا ہمیں اس کی شدید ضرورت ہے. لہٰذا اب میں اس موضوع کے اوپر بولوں گی جو شاید میرے لیے آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. اور واقعی ان کی بات صحیح تھی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں آج تو ہم وہ کچھ لے کر اٹھیں جو آگے زندگی میں ہمارے لیے مشعل راہ بن جائے. ہمارا یہاں پہ آنا، یہاں پہ بیٹھنا اللہ کی خاطر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں ہدایت اور نور رہنمائی بخشے، ہمارے علم کو علم نافع بنا دے، اور اس پہ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو میں نے آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان آیات کے تناظر میں آپ کچھ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ کیا آج کا ٹاپک ہے. یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اس سے ہماری آگے کی زندگی میں یا تو ہم خیر کا راستہ اپنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو عبادت بنا سکتے ہیں، اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی ساری نیکیاں برباد کرتے ہیں. یہ اس قدر اہم موضوع ہے کیونکہ یہ موضوع زبان سے متعلق ہے. زبان سے، زبان اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو صرف قوت گویائی عطا فرمائی. باقی جو جانور ہے، باقی حشرات ہے، ان سب کے پاس زبان تو موجود ہے لیکن کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے بہت بڑا احسان یہ ہے کہ ہم بول سکتے ہیں، ہمارے پاس گویائی ہے، ہم ایک دوسرے کو اپنے تاثرات، اپنے خیالات، اپنے جذبات پہنچا سکتے ہیں. جہاں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا امتحان بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں امتحان کے طور پہ دی ہیں ان کا حساب ہونا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی تو دی، لیکن اسی قوت کے ذریعے ہم اپنے وقت کو عبادت بھی بنا سکتے ہیں، اور اسی میں ہم اپنے لیے وبال بھی اکٹھا کر سکتے ہیں. یہ زبان وہ نعمت ہے جو جس کو مل جائے उसके ऊपर एक जिम्मेदारी ये आयद होती है कि वो इसको बड़े ही तरीके, बड़े ही सोच समझ कर इसको इस्तेमाल करें। ये इसलिए नहीं है कि इसको ऐसे ही लूज छोड़ दिया जाए। ये माल और दौलत से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि माल और दौलत कमा के हासिल किए जा सकते। अगर किसी के पास गोयाई नहीं, तो कोई उसको माल से गोयाई लाके नहीं दे सकता, बोलने की सलाहियत नहीं दे सकता। ये वो नेमत है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को अता फरमाई, इससे भी पता चलता है कि कितनी अजीम नेमत है। ये वो नेमत है कि जिसके जरिए इंसान अपने लिए जन्नत को कमा सकता है और इंसान अपने लिए दर्जात की बुलंदी पा सकता है। देखिए, जब हम कलाम करते हैं तो इसको कहते हैं ना, बोलने को कलाम करना। कलाम कलमुन से, ये लफ्ज कलमुन का मतलब होता है जख्मी करना। इसका मतलब कलाम का कुछ ताल्लुक, जख्मी करने का कुछ ताल्लुक बोलने से है। बोलने को भी तो कलाम कहते हैं। तो जब क्या ताल्लुक हो सकता है बोलने के साथ जख्मी करने का? तो इसलिए कि जो बोल है, जो कलाम है, वो दूसरों के दिल जख्मी भी कर देता है, छलनी कर देता है, तकलीफ दे देता है उनको, अजियत पहुंचाता है उनको, उनको गमगीन कर देता है। आप ये देखिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान भी पढ़ते हैं, हम नमाजें पढ़ते हैं, हम अपनी तरफ से रोजे भी रखते हैं, जो भी हमारे से इबादत सदका और खैरात भी करते हैं, लेकिन एक इबादत ऐसी है जो जुबान से भी की जा सकती है। जुबान भी इबादत करती है। जुबान के जरिए भी आप नेकी की, भलाई की बात करके वही अजर कमा सकते हैं। लेकिन आप ये देखें, नोट करें कि नमाज पढ़ना भी आसान, सदका करना भी आसान, रोजा रखना भी आसान, मगर इस जुबान को सही इस्तेमाल करना ये बहुत मुश्किल काम है। यही जुबान इंसान को ऊपर भी पहुंचा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। इसके मुतालिक हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और ये बड़ी अहम हदीस है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान एक कलिमा अपनी जुबान से निकालता है। कितना कलिमा? एक। ठीक है, एक कलिमा, ये इसको गौर से सुनिएगा, ये बहुत अहम हदीस है। एक कलिमा अपनी जुबान से निकालता है और बेध्यानी में निकालता है, उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं करता, लेकिन वो एक कलिमा अल्लाह ताला को इतना पसंद आता है कि उसके दर्जे वो अल्लाह ताला इतने बुलंद कर देता है। दूसरी हदीस में आता है, इतने उसके दर्जे बुलंद कर देता है जितना मशरिक और मगरिब में फासला है, इतने उसके दर्जे। किसकी वजह से? एक कलमे की वजह, सिर्फ एक बात जो तो उसने बेध्यानी में कही, बेतवज्जुही से कही, उसने सोचा भी नहीं, कुछ ज्यादा सोच के विचार के नहीं, बस बोल दी। लेकिन दूसरी खतरनाक बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अपने मुंह से एक कलमा बस निकालता है, जिसको वो बेध्यानी से निकालता है, तवज्जो भी नहीं देता, लेकिन अल्लाह ताला को उसकी वो बात इतनी नापसंद आती है कि उसकी वजह से वो जहन्नुम में अपना मकाम बना लेता है। और ये दूसरी हदीस में कि इतना जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान फासला है, इतना अपना मकाम जहन्नुम में बना लेता है, इतनी नीचे। क्या उसको पता है कि मैंने ये बात कही हदीस में? नहीं, बेतवज्जुही से, बेध्यानी में, उसको पता ही नहीं, उसने रियलाइज ही नहीं किया, उसने सोचा ही नहीं, और उसने मुंह से निकाल दी। लेकिन उस एक बात ने उसको किधर नीचे अथाह गहराइयों में पहुंचा दिया। इंसान हमेशा जब मुंह से कुछ निकालने लगता है, वो शायद सोचता भी नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं, मेरी ये बात दूसरे को कैसे लग रही है, मेरी ये बात कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बन जाए। जो मैंने सूरह काफ की आपके सामने आयात रखी, इसमें यही है कि कोई एक बात भी, एक लफ्ज भी इंसान मुंह से ऐसा नहीं निकालता, मगर उसके जो फरिश्ते हैं ना, वो हाजिर, बिल्कुल निगरान, बिल्कुल तैयार बैठे हैं उसको लिखने के लिए। वो जरा भी सोते नहीं, सुस्ती नहीं करते, डिले नहीं करते, फौरन लिख लेते हैं। कभी इस एहसास के साथ हमने बात करने की कोशिश की कि हमें यह एहसास हो कि अल्लाह मेरे साथ फरिश्ते बैठे हैं जो लिख रहे हैं, मेरे साथ फरिश्ते बैठे हैं जो मेरी एक एक बात को नोट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक जगह गुजर रही थी, मैंने लिखा हुआ था कि यहाँ पे सीसी कैमरे लगे हैं, मोहतात रहिए, जो 24 घंटे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैंने सोचा इंसान मोहतात रहने किस चीज से सीखता है कि मोहतात रहना है कैमरे से, कैमरे की आंख है तो इंसान कहता है मोहतात रहूं, और अल्लाह की नजरों की वो एहसास नहीं है कि उस पे मोहतात रहना, कि अल्लाह मुझे देख रहा है। और सोचें कि ये जुबान इतनी सी सिर्फ एक छोटा सा उज्व है, कितनी छोटी सी है ना, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे जो गुनाह है वो इस जुबान के जरिए होते हैं, सबसे ज्यादा सारी गुनाहों की जो जड़ समझ लें ये जुबान है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआज बिन जबल से, आपने फरमाया ए मुआज, जुबान की वजह से सबसे ज्यादा लोग जहन्नुम में जाएंगे, सबसे ज्यादा इस जुबान की वजह, छोटी सी जुबान है। और एक जगह पे आता है कि सुबह होती है जब, तो तमाम आज़ा जो है वो इस जुबान के आगे हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं तू सीधी रहना, आज तू सीधी रहना तो हम सीधे रहेंगे, और तू बिगड़ गई तो हम सबका खाना खराब हो जाएगा। यानी इतनी सी जुबान के आगे ये सारे आज़ा बेबस है, सबको जहन्नुम में ले जाने का सबब बन सकती है ये एक जुबान। छोटी है लेकिन इसकी काट इतनी होती है कि बाज दफा रिश्तों को तोड़ देती है, बाज दफा फूट डलवा देती है, बाज दफा फसाद का बाइस बन जाती है, बाज दफा नफरतें फैला देती है, बाज दफा गुस्सा दिला देती है। बहुत बहुत काम इस एक जुबान से ही होते हैं। बाज दफा इतना इश्तियाल दिला देती है कि कोई मरने मारने पर तैयार हो जाता है, क्या एक जुबान ही है ना। और सबसे ज्यादा औरतें किस वजह से जहन्नुम में जाएंगी, औरतों की अक्सरियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी थी ना जहन्नम में, किस वजह, लानते बहुत भेजती हैं और शोहर की नाशुक्री करती है। लानते भेजना भी जुबान का अमल, शोहर की नाशुक्री भी जुबान का अमल, यानी जुबान ही है जो हमें ले जाए जहन्नम के अंदर। क्या इसको हम काबू नहीं कर सकते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा निजात किस में है, किस तरह हम निजात पा सकते हैं जहन्नुम से, निजात पाने का हम सबको शौक है कि अल्लाह हमें जहन्नुम से निजात दे देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली जो बात कही तो आपने फरमाया निजात इसमें है कि अपनी जुबान को काबू में रखो, अपनी जुबान को काबू में रखो, अपने घरों को काफी समझो। घर को काफी समझने का मतलब क्या है, यानी दूसरों के घरों की तरफ मत देखो, अपने घर की तरफ तवज्जो करो। ये नहीं कि इंसान की तवज्जो ज्यादा इस चीज पे हो कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है, तो मुझे अपने घर की परवाह ना हो। और तीसरा काम, अपनी खताओं पे रो। आप मुझे बताइए कि रोज तो छोड़ दें, हफ्ते में कोई एक दिन भी ऐसा होता है कि मैं अपनी गलतियों पे रो? गलतियां, खताएं, गुनाह तो हम रोज करते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन भी ऐसा नहीं कि हम रोएं अल्लाह ताला के आगे कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई, क्योंकि हम अपनी गलतियां मानने को ही तैयार नहीं। हालांकि निजात तो इसी के अंदर है। सबसे पहली चीज बताई जुबान को काबू कर लो। अगर जुबान के गुनाहों को देखा जाए, आज मैं सुबह सोच रही थी और मैंने कहा ये तो जब लिखे मैंने क्या क्या गुनाह है जो हम जुबान से करते हैं, इतने बेशुमार थे, सोचती थी अल्लाह इतने सारे गुनाह, इसका मतलब एक जुबान को अगर काबू कर लिया तो कितने सारे गुनाहों से हम बच सकते हैं, मैं और आप निजात पा सकते हैं वाकई अगर सिर्फ एक इस जुबान को काबू कर ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह एक औरत है बहुत कसरत से नमाज रोजा करती है, इबादत में बहुत कसरत करती है, सदका भी देती है, लेकिन उसके हमसाए उसे अजियत में उसकी जुबान की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया अच्छा वो नमाज रोजा करती कितनी नेक है, फरमाया वो जहन्नमी है। हालांकि क्या कसरत से नमाज रोजा, हम जब किसी को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम कहते हैं बड़ी तहज्जुद गुजार है, बड़ी नेक है, बड़ी सदका खैरात करती है, बड़ी नमाजें पढ़ती है, रोजे बहुत रखती है, ये देख के हम नेकी सोचते हैं ना। अगर हमारी जुबान काबू में नहीं है और इससे दूसरे को अजियत पहुंच रही है तो ये नेकियां सब बर्बाद हो जाएंगी ये एक जुबान की वजह से। और हम औरतों को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपनी जुबानों पर काबू करें। उन सहाबी ने एक और औरत के बारे में बताया, फरमाया वो वाजिबी सा नमाज रोजा करती है, यानी फर्ज नमाजें पढ़ ली, फर्ज रोजे रख लिए, फर्ज सदका खैरात ज़कात दे दी, लेकिन उसकी वजह से उसके हमसाए बहुत खुश है। फरमाया वो जन्नती है। क्या मतलब हुआ? यानी इसका मतलब है कि आपके नमाज रोजे कसरत से करना आपको बचाएंगे नहीं अगर आपकी जुबान काबू में नहीं होती। जब तक अपनी जुबान को काबू में नहीं रखते तो मत खुशफहमी में रहें अपने नमाज रोजे की वजह से कि मेरा नमाज रोजा मुझे बचा लेगा। ये खुशफहमी छोड़ दें, इसलिए कि नमाज रोजा तभी आपको बचाएगा जिस वक्त आपकी जुबान काबू में रहेगी। कुछ थोड़े से गुनाह देख लेते हैं जो जुबान से होते हैं ताकि हमें समझ आए कि क्या हम कह रहे हैं, क्योंकि हम सब अपने आप को सोचते हैं कि मैं तो कुछ ज्यादा ऐसे गुनाह नहीं करती। मसलन एक गुनाह है जिसको कहते हैं चुगलखोरी। चुगलखोरी क्या चीज होती है? कि आप किसी के पास जाएं और किसी और का बताएं, फलां तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, दोनों को लड़वा दिया, दोनों के दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए बुग्ज रख दिया, एक दूसरे को दूर कर दिया। ये है चुगली करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और कोई किसी के पास जाती है औरत और कहती है हाय बाजी आप तो फलां की इतनी तारीफ करती हैं और उनके साथ इतना अच्छा करती हैं, पता है उसने आके मेरी क्लास कितनी बुराइयां की आपकी। कहती अच्छा क्या कहा उसने? मैं उसको बताती हूँ उसने ये कहा आपके बारे में, ये कहा, ये क्या चुगली है। अब क्या उन दोनों के दरमियान फूट डाल दिया आपने, उनके दिल दूर कर दिए। वो ये सुन के वो भी गुस्से में आ गए, उसका दिल खराब हो गया, उनके ताल्लुकात खराब हो गए। आपने आके कहा आप, तुम्हें पता है तुम्हारी सास तुम्हारे बारे में ये कह रही थी, हमें पता तुम्हारी बहू ये कह रही थी। सास को बहू की लगा दी, बहू को सास की लगा दी, नंद को भाभी की बता दी, उसको भाभी को नंद की कह दी। इसी तरह ताल्लुकात खराब होते हैं ना। एक बुजुर्ग थे, उनके पास कोई इसी तरह बात लेकर आया कि फलां आपके बारे में ये कह रहा था, तो फरमाया कि शैतान को तुमसे ज्यादा कोई अच्छा इलची नहीं मिला, तुम तो शैतान के एजेंट हो। सुनने वाला ऐसा क्यों नहीं कर सोचता कि उसको मना कर दे कि तुम मेरे पास किसी की बात मत लेकर आओ, किसी ने कहा है। अगर वो आपका इतना हमदर्द है ना तो उसको चाहिए था उसको खुद जवाब देता। जो आपके पास ये बात ले आया कि वो आपके बारे में ये कहता है, अब आप भी कुछ कहेंगे तो उसको जगह कहेगा वो देखो तुम्हारे बारे में ये कह रही थी। वो कभी आपका हमदर्द नहीं हो सकता जो आपको आके बताए कि फलां ने आपके बारे में ये बात की। वो आपका इतना हमदर्द होता तो उसका मुंह बंद करता। तो आप उसको ये क्यों नहीं कहते कि तुम उठ सुन के मेरे पास आ गई, तुमने क्यों ना उसका मुंह बंद किया, तुमने क्यों ना उसको कह दिया कि ये बात मत करो, तुमने क्यों ना मेरी सफाई पेश की, और फिर उसको वहीं पे मना कर दीजिए कि मुझे नहीं सुनना, बजाय इसके कि हम भी सुने और हमारे ताल्लुकात खराब हो। शैतान इसी तरह फूट डलवाता है, घरों में दरारें डालता है, दिलों में कीने पैदा करता है। कीने क्यों आते हैं? इसी तरह की बातों से, फलाने ने आपका ये कह दिया, फलाने आपको ये कह दिया, फलां आपकी ये बातें कर रहा था। ये है चुगलखोरी। और आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजर रहे थे तो आपने देखा उसको अजाब हो रहा है। तो किस वजह से अजाब हो रहा था? दो बातों की वजह से, एक चुगलखोरी और एक पेशाब के कतरों से एहतियात नहीं करता था वो। चुगलखोरी इतना बड़ा गुनाह है, कब्र में भी नहीं छोड़ेगा, और हमारे लिए कितना आसान है किसी के पास भी बैठे तो तुम्हें पता है ऐसे हो, तुम्हें पता उसने ये कहा, कितने आराम से कह देते। क्यों क्यों लोगों से को नफरत दिलाते हम उनके सास से, उनकी नंदों से, उनके इनसे? क्यों क्यों बहुओं को जाके ये कहते हैं, क्यों सासों को जाके उनके दिल में कुछ डालते हैं कि वो, हम ये असल में चाहते हैं हमारी वैल्यू बन जाए और अल्लाह की नजरों में गिर जाते। अब मैंने आपको जो ये हदीस बताई ना, सारी बेस इस चीज को, एक बात को समझने, एक कलमा अगर मेरी जुबान से ऐसा निकल गया कि मेरे अल्लाह को ना पसंद आ गया तो क्या होगा? ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شر کا بھی ایک ذرہ ہوگا نا وہ بھی دیکھ لو گے. ایسے نہیں ہے کہ آپ جاتے جاؤ گے اور وہاں پہ اتنی سی بات سے کیا فرق پڑتا ہے، کتنے آرام سے ہو جاتا ہے نا، اتنی سی اس سے کیا فرق پڑے گا. تو کیا ہو گیا، سبھی ایسے کرتے ہیں. جب ذرہ ذرہ وہاں پہ کاؤنٹ ہونے لگے گا نا تو پھر پتا چلے گا کہ یہ چھوٹی بات بھی کتنی بڑی تھی جس کو ہم منہ سے ایسے ہی نکال دیتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کہف، آپ لوگ پڑھتے ہوں گے جمعے کو، وَعُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے صفوں میں. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اب آ گئے نا تم ہمارے پاس جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اس طرح ہم تمہیں لیا ہے. بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، تم نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ کوئی وعدے کا وقت نہیں ہے، تمہیں واپس نہیں پلٹنا، یہی رہنا. یقین جانے اگر ہم نا تھوڑی دیر کے لیے اپنی موت کو یاد کر لیں نا، ساری باتیں ہی ختم ہو جائیں. یہاں پہ میں آتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں گھروں میں اتنی ناچاکیاں، لوگوں کے دل آپس میں پھٹے ہوئے، کینے اور بغض سے بھرے پڑے، نفرتیں، غصے، فرسٹریشن، یا کیا چیز ہے، خاندان ٹوٹے پڑے، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بہن بہن سے بات نہیں کر رہی، لوگوں کے دل اتنے دور کیسے ہوئے. سوسائٹی کا کوئی تو کنٹریبیوشن ہوگا، کہیں نہ کہیں تو کچھ ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں تو کوئی لوگ ہیں جو شیطان کے ایلچی بنے ہوئے، شیطان کے امبیسڈر ہیں جو جا کے باتیں لگاتے ہیں، لگائی بجھائی کرنا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کرنا. آج ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکے اس درس میں، اور ہم نے ایسا کر چکے ہیں تو اس کے اوپر ہم توبہ کریں، یا ہماری وجہ سے کسی کا گھر خراب ہوا. اور اپنی غلطی کو ماننے، جو اپنی غلطی کو مان لیتا نا وہ بڑا ہوتا ہے، اور اس کی توبہ قبول ہو جاتی. جو غلطی مانتا ہی نہیں وہ چاہے توبہ استغفار کی کتنی تسبیحاں کرتا رہے، اس کی توبہ نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہے کہ انسان کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، وہ اس کے سوچے کہ میں نے غلط کیا ہے. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہی زبان آپ کے لیے عبادت بھی بن سکتی ہے، اور یہی زبان جہنم تک بھی لے جا سکتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ یہی تو جہنم میں لے کے جائے گی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم مجھے اپنی زبان اور شرم گاہ کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تم یہ کہہ دو کہ زبان اور شرم گاہ کا تم صحیح استعمال کرو گے، جو حلال ہے وہ بولو گے، جو حرام ہے وہ نہیں بولو گے، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہم سب سے زیادہ پھسلتے ہی زبان پہ جا کے، یہ ہماری زبانیں قابو میں نہیں. پھر دوسرے ایک بڑا گناہ جو ہم زبان سے کرتے، غیر محتاط گفتگو، بس کیے جانا. ہر ایک جو گزر رہا ہے، جو بیٹھا ہے، جو کھڑا ہے، اس پہ کوئی نہ کوئی کمنٹ دیتے جانا، وہ دیکھو کتنی موٹی، وہ دیکھو اس کو ایسی، اس کی شکل ایسی، اس کے کپڑے دیکھو، اس کا کیا، ہمارے پاس یہی کام رہ گیا؟ کیا ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں؟ کیا یہ زندگی اتنی بیکار ہے کہ اس کو ہم ان کاموں میں گزارے؟ کہ جو آتا جاتا ہو، ہم سڑک پہ بھی چل رہے ہیں تو لوگوں کو کمنٹ دے رہے ہیں، آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ فون پہ کچھ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بھی لوگوں پہ کمنٹری ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے. کیوں؟ یہ زبان اس لیے بھی لی کہ ہم اس کا ایسے بے درد استعمال کریں، اس کو ایسے کہیں، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا. اصل میں آپ نے اپنی نیکیاں اس کو دے دی، آپ نے اپنی نیکیاں اس کو مفت میں دے دی. اس کا کچھ نہیں گیا، آپ کا چلا گیا. کسی کی پکچرز دیکھی، اس پہ کمنٹری کرنی، یہ دیکھو کیسے اس نے کیا میک اپ کیا ہے، دیکھو کیسی لگ رہی، کتنی بری لگ رہی، دیکھو اس کا ویٹ، دیکھو اس کے کپڑے. آپ کو ایک گندی اور اچھی مکھی میں فرق پتا ہے؟ ایک اچھی مکھی بھی ہوتی ہے جو شہد کی مکھی ہوتی ہے، اور ایک گندی مکھی بھی ہوتی ہے. گندی مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے، گندگی کے ڈھیر پہ. کیا ہم ایک گندی مکھی ہیں جو ہمیشہ گندگی پہ جا کے بیٹھے گی؟ کیا ہمیں کسی اور کا کوئی اچھائی نظر نہیں آتی؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا تھا، تو سب نے کہا دیکھو کیسا ہے، ایسا ہے اس کے ذریعے، تو فرمایا لیکن اس کے کان تو دیکھو کتنے خوبصورت ہیں. आप एक ऐसी ऐसी बेकार सी चीज में से भी कोई खैर ले सकते हैं, कोई अच्छाई निकाल सकते हैं। और अगर हमारे जौक खराब, हमारी सोच खराब, तो फिर एक अच्छी चीज में से भी हमें बुराई नजर आती है। क्यों हमें हमेशा लोगों के ऐब ही नजर आते हैं? ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये फोहड़ है, इसको कुछ काम नहीं आता, उसकी कोई भलाई क्यों नहीं नजर आती? हालांकि किसी भी इंसान में खैर ज्यादा होगी, शर कोई नहीं होगा, खामियां कम होंगी, खूबियां ज्यादा होंगी। लेकिन जब हम गंदी मक्खी बन जाते हैं ना, तो हमें उसकी खामियां नजर आती हैं और खूबी नजर नहीं आती। खूबियां देखने के लिए अपनी सोच को सही करना जरूरी है, खौफे खुदा होना जरूरी है। यकीन जाने अगर हम अपनी जुबान को अच्छा कर लेंगे ना, और इससे खैर की बात निकालेंगे, अच्छी बात निकालेंगे जो दूसरे का दिल खुश कर दे, तो आप हर दिल अजीज हो जाएंगे। आप चुगलियां करके अजीज नहीं होंगे। हम समझते ना, हम इसकी उसको आके मैं आपको आके बताऊं कि उसने आपके बारे में क्या कहा, तो मैं आपकी महबूब बन जाऊंगी। इससे नहीं महबूब बनते। महबूब इससे बनते हैं कि आप किस आप महबूब बनना चाहते हैं ना, इसलिए आप कहते हैं कि मैं इसको इधर उधर की बताऊं बातें आके। महबूब इससे बनते हैं कि आप जब मुंह से निकालें अच्छी बात निकालें। और वो अच्छी बात क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, कूलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों के साथ अच्छी तरह बात करो। सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, सिर्फ नेकों के साथ नहीं, लिन्नास सब लोगों के साथ अच्छी बात, हर एक के साथ। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई आपकी मेड है, या कोई बड़ी कोई लोग है, कोई भी है, अच्छी तरह बात करो। क्या इस पे पैसे लगते हैं? कितना खर्चा आता है अच्छी बात करने में? कुछ भी खर्चा नहीं आता, फिर भी हम कितने बखील हैं कि हमसे अच्छी बात नहीं होती। देखिए दो तरीके, मैं आपको अच्छी बात बताती हूँ। मैं किसी को कहना हूँ, देखिए एक तरीका ये हो सकता है कि मैं किसी को कहूँ कि मेरी रानी, मेरी शहजादी, आओ बैठो। तो मैं कहता हूँ, ओए इधर आ, इधर बैठ। बात एक ही है, मैंने ये कहा कि बैठो, लेकिन अल्फाज का चुनाव, आपका लहजा, आपका तरीका, आपकी टोन और आपकी नीयत, इसमें मैटर करती है। ये चीजें हैं जिनसे गुफ्तगू अच्छी होगी। खर्चा कुछ नहीं, आपका कुछ नहीं जाएगा, और आप देखना बल्कि आपको अच्छा फील होगा। आप एक दिन अच्छी गुफ्तगू करके देखिए कि आज मैंने सारा दिन सिर्फ अच्छी गुफ्तगू करनी। सुबह से अपनी नियत कर लें, एफर्ट करें उसके लिए। आज मैंने जिससे भी बात करनी है ना, बहुत प्यारे तरीके से करनी है। मैं किसी को जानती हूँ, बहुत अजीज है सबको, मुझे भी बहुत अजीज है। देखिए उनके लिए सदका जारिया हो गई है बात, वो कहाँ बैठी है, सात समुंदर पार। लेकिन मैं जो उनकी बात कर रही हूँ, तो ये मेरी गवाही हो गई इतने सारे लोगों में उनके लिए। जब वो बात करती हैं, तो वो आराम से ऐसे ही, जैसे नॉर्मल, ऐसे नहीं, मेरी शहजादी, मेरी रानी, कैसी हो? देखो इतनी सी बात बोलने से क्या दिल कितना खिल उठता है, कितना खुश हो जाता है, कितनी आपको एनर्जी मिलती है। और आपका दिल, अब मेरे से कोई ऐसे बात करेगा तो मेरे दिल में क्या आएगा? उसके लिए मोहब्बत पैदा होगी, मेरा दिल इतना अच्छा हो जाएगा, और मैं भी उससे प्यार से बात करूंगी। फिर उसके बाद दूसरों के लिए कंसर्न शुरू करना, दूसरे के साथ हमदर्दी से बात करना। अगर दूसरी जो चीज जुबान की आफतों में है, अगर मुझे ये डर है ना कि आप मेरे पास बैठी हैं, प्यारी बात कर रही हैं, प्यारी बात, हुस्ना, उन्होंने ना सी हुस्ना में ये नहीं कि आप झूठ बोले, झूठ नहीं बोलना, किसी की तारीफें करना शुरू हो जाए, खुशामदे करना शुरू हो जाए, ये नहीं है इसके अंदर। सच बात बोलनी, लेकिन बेहतरीन तरीके से। अब आप मेरे पास बैठे, अगर आप यहाँ पे मेरे साथ अच्छे तरीके से बात करें, लेकिन जो ही आप दरवाजे से बाहर जाते हैं, आप कहते हैं हाँ क्या थी, ये थी, वो थी, ऐसे थी, वैसे थी, ये क्या है? ये है गीबत। दूसरे को सिक्योर महसूस करना चाहिए आपसे, और उनकी सबसे बड़ी ये खूबी मुझे लगती है। मैं इसलिए एक लाइव इंसान की मिसाल दे रही हूँ कि ऐसे लोग हैं अभी भी दुनिया में, कि जब आप मेरे पास बैठे तो मुझे ये डर नहीं होना चाहिए कि अभी ये जाएगी पता नहीं मेरी क्या बुराइयां करेगी, ये मेरे घर आई है ना, अब ये सारा नोट करेगी, और थोड़ी देर बाद देखना जरा आज मोहल्ले में जाकर सारी क्या बातें फैलाएगी। ये अभी मेरे पास बैठी है ना, अभी तो बड़ी मीठी है, लेकिन ये मीठी छुरी है, अभी जाके देखना जरा ये क्या क्या मेरे ऐब बयान करेगी। क्या हम ऐसे हैं? मैं कभी सोचती हूँ अंबिया ने भी दुआएं मांगी कि अल्लाह हमारा जिक्र खैर दुनिया में बाकी रहे। क्या मुझे और आपको शौक नहीं क्या जब हम दुनिया से जाएं अल्लाह लोग हमारा जिक्र खैर करें, या ये करें लगाई बुझाई करती थी। हाय हाय इसकी तो जुबान ऐसी थी, ये तो किसी को छोड़ती नहीं थी। ये चाहते हैं या जैसे मैं उनका जिक्र कर रही हूँ, वो यहाँ पे नहीं है, मैं उनका जिक्र कर रही हूँ यहाँ पर सात समुंदर पार, या ऐसा हमारा जिक्र होना चाहिए। इसलिए कि हम जहां जाते हमारे असरात हैं, पता है मैं अब यहां बैठी हूं ना, मैं यहाँ पे कुछ असर छोड़ के जाऊंगी आपके ऊपर। आप जहां बैठी हैं, आप जिससे बात कर रही हैं, आपके साथ वाले पे आप कोई असर छोड़ेंगे। ये हमारे असरात भी सूरह यासीन आप पढ़ते ना, इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम। अल्लाह ताला फरमाता है हम आसार भी लिखते हैं, जो आप आसार छोड़ जाएंगे ना कहीं, वो भी लिखे जा रहे हैं। ये मेरे आसार है, जैसे आप दूसरे से बात करते हैं, जैसे आप दूसरे से मिलते हैं, जैसे आप जो भी आपके गुफ्तगू का मौजू होता है वो आपके आसार है। आप अपने आसार क्या छोड़ रहे हैं? क्या हम असरात अपने छोड़ के जा रहे हैं दुनिया में? हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं। कोई ऐसी माँ जो चुगलखोर हो, झूठी हो, लोगों की बुराइयां करती हो, याद रखें उसके बच्चे कभी उसकी इज्जत नहीं करेंगे। हमेशा याद रखें, आप ये सोचते हैं ना लोगों के सामने अच्छे बन गए, आपके घर में आपके बच्चे आपको नोट कर रहे हैं, देखिए हमारी माँ ऐसी है। आज उनको नहीं समझ आएगी, वो छोटे होंगे, जब बड़े होंगे तो उनको समझ आएगी हमारी माँ ऐसे करती थी। वो भी यही सीखेंगे, वो आपका सदका जारी है, वो भी यही करेंगे। क्या हम ये चाहते हैं? ये तरबियत चाहते हैं अपनी औलाद की? तो ऐसी गुफ्तगू ना करें जो गैर में होता, तो क्यों नहीं हम उसकी जगह अल्लाह का जिक्र कर लेते? अगर जुबान फारिग बैठी भी तो किसी का हाल पूछ लें, किसी को अच्छा मशवरा दे दें, किसी को दुआ दे दें। पता है आपको कि दुआ कितना बड़ा तोहफा है? जो कोई तोहफा आपको देता है ना, वो तोहफा पुराना हो जाना है, वो कोई कपड़ा है, कोई चीज है, वो पुरानी हो जाएगी, लेकिन जब दुआ वो दे देगा ना, या अच्छी बात कर देगा, कभी भी आपको याद आएगी, तो उससे दिल में एहसास अच्छा पैदा होगा, और दुआ आपको लग जाती है तो वो भी आपके लिए खैर ही खैर है। तो किसी को दुआ दे दीजिए, किसी का हाल अहवाल कर ले, किसी को अच्छा मशवरा दे दे, अच्छी बात किसी को कह दे जिससे उसका दिल खुश हो जाए। लेकिन अपनी जुबान को बेकार चीजों में ना डालें। हम देखें जितनी देर में हम यहाँ पे पहुंचे हैं, जितना वो वक्त हमने गुजारा सफर में यहाँ पे आने में, वो कहाँ चला गया? उसको कोई वापस ला सकता? कितने भी पैसे दे दे नहीं आ सकता, नहीं खरीद सकते। उसमें जिसने अल्लाह का जिक्र कर लिया, उसने इसमें कमाई कर ली, और जो खामोश बैठा रहा तो वो वक्त जो चला गया, और जिसने उसमें कोई गिबत कर ली, कोई चुगली कर ली, उसने गुनाह कमा लिया। हम अपना पूरा दिन देखें और उसमें देखें हम क्या कमाइयां कर रहे हैं। इब्ने मुनकदिर थे, मोहम्मद बिन मुनकदिर ताबई थे, वो बहुत बड़े ताबई हैं, इतना बड़ा इनका मकाम है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला हज़रत इब्ने अब्बास, इनसे सबसे उन्होंने तालीम ली हुई है, और बड़े बड़े आइम्मा कराम इनके शागिर्द रहे। जब कुरान पढ़ते थे ना तो ज़ारो कतार रोया करते थे। तो एक दफ़ा एक रात में वो कुरान की एक आयत सूरह ज़ुमर की है, वो आयत पढ़ रहे थे, इस कदर रोए, इस कदर रोए कि सुबह हो गई। वो आयत का हिस्सा है कि वह बदा लहुम मिन अल्लाह मा लम यकूनु यहतसिबून, वह बदा लहुम मिन अल्लाह, उनके आगे अल्लाह की तरफ से वो आएगा जिसका वो गुमान भी नहीं करते होंगे। इंसान सोचता है ना, जब हम अपने इंजाम को सोचते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे हम मरेंगे तो इधर ही जन्नत के फरिश्ते आ जाने और जन्नत की खुशखबरियां देंगे, हम आगे जाएंगे, फिर वो आगे हमारे लिए कितना कारपेट, रेड कारपेट बिछा के हमें जन्नत में ले जाएंगे। लेकिन वो इस पे रो रहे थे कि अल्लाह ताला के उनके सामने वो लेकर आएगा जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, इस पे रो रहे थे। हम कभी सोचते हैं इस बात को? कभी हमें फिक्र होती है कि मेरे लिए कौन से फरिश्ते आएंगे? पता नहीं मेरे सामने क्या आएगा, पता नहीं मेरी किसी बात के ऊपर मेरी पकड़ तो ना हो जाएगी, पता नहीं मैंने किस किस का घर खराब कर दिया, पता नहीं मैंने क्या क्या बातें इस जुबान से निकाल दी। एक जुबान का हिसाब देने लगे ना हम, तो हमारा क्या हाल हो जाएगा अगर हम रोज यही काम करते रहे जो हम कर रहे हैं। ये भी एक जौक होता है, मैंने आपको बताया ना, जैसे एक गंदी मक्खी का जौक है और एक शहद की मक्खी का जौक है। शहद की मक्खी हमेशा फूलों पे बैठती है, वो कभी गंदगी पे नहीं बैठती, कभी आप उसको कूड़े करकट पे बैठे हुए नहीं देखेंगे। शहद की मक्खी क्यों नहीं बनते, अच्छी बातें क्यों नहीं करते जिससे किसी का दिल खुश हो जाए? तो इब्ने मुनकदिर से किसी ने पूछा, आपका पसंदीदा अमल क्या है? तो फरमाया, किसी मुसलमान का दिल खुश कर दूं। कभी हम भी नहीं चाहते कि हम किसी का दिल खुश कर दें, क्यों उसके ऐब हमें हमेशा नजर आए? क्यों ऐसा होता है? क्यों नहीं किसी को अप्रिशिएट कर लेते, किसी की तारीफ कर दें, सच्ची तारीफ, किसी को अच्छे लकब से बुला लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को कभी आयश कहते थे, कभी हुमैरा कहते थे, कितने प्यारे लकब आप देते थे, लोगों के दिल खुश कर देते थे, कभी ऐसे नहीं करते थे। तो मुझे क्या इसकी परवाह है, मैं इतनी बड़ी चीज हूँ, मैं कोई किसी का वो तो नहीं हूँ कि मैं इनके कोई बात करूँ, इनका दिल खुश करूँ, मैं मुझे क्या परवाह है? इतने बड़े मर्तबे पे पहुंच के वो भी लोगों का दिल खुश कर दिया करते थे, इसीलिए हर कोई उनका बन के रहता था, हर कोई उनसे मोहब्बत करता था। मोहब्बत कमाई जाती है, इसको कमाना पड़ता है, मोहब्बत भी एक कमाई है आपकी, लेकिन उसके लिए जुबान का सही इस्तेमाल जरूरी है। आप अपनी जुबान के जरिए लोगों को अपने से करीब भी कर सकते हैं और दूर भी कर सकते हैं। बाज लोगों की जुबानें इतनी शर्मगेज होती हैं, लोग डरते हैं उनकी जुबानों से कि इनके पास जाएंगे तो पता नहीं कुछ कुछ कहेंगे, कुछ सुना देंगे, कुछ कह देंगे, डर लगता है उनसे। अरे मैं ऐसी तो नहीं कि लोग मुझसे डरते हैं। फिर जुबान की एक बुराई है बात का बतंगड़ बनाना, छोटी सी बात है उसका इतना बड़ा बतंगड़ बना देना कि उससे झगड़ा खड़ा हो जाए, उसे फसाद हो जाए, उससे घरों के अंदर लड़ाई हो जाए, सारा माहौल खराब हो जाए। छोटी सी बात है, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। छोटी सी बात है, इसने मेरे से मुझे पूछा नहीं, मैं वैसे मिसाल दे रही, इसने मुझे पूछा नहीं, इसने ये कर दिया, इग्नोर। लेकिन वो भी हमारी जुबान होती कि हम छोटी सी बात को इतना बड़ा ड्रामा बना के ना उसको पेश करते हैं और उससे कुछ हम हासिल करना चाहते हैं। फिर इसी तरह बात को, जो बात इतनी नहीं होती उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बात वैसे नहीं है उसको किसी और तरह बना के पेश कर देना। शौहर को कहना, तुम्हारी अम्मी तो मुझे ये कह रही थी, हालांकि उन्होंने तो किसी और तरह से कहा, आपने जाके उसके कानों में डाल दिया। शौहर से कहा कि आपकी बहू तो ये कह रही थी, उनको इनसे नफरत करा दी। ये सब हमारे काम है घरों के, इसी वजह से हमारे घरों में दरारें होती हैं, क्योंकि हम इस जुबान को काबू नहीं करते। बात को जितना है उतना ही रखना चाहिए, ना कि उसको इतना बढ़ा के दूसरे के कानों में डाल रहे हैं और उससे क्या नफरतें फैलेंगी, मोहब्बतें तो नहीं आएंगी। फिर आप देखिए, ताने देना, दूसरों की नकलें उतारना, इसी तरह टो लगाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम का, किसी के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो लायानी बातें छोड़ दे, जिन बातों से आपका कोई ताल्लुक नहीं, क्या जरूरत है पूछने की? तुम्हारी सास कैसी है, तुम्हारे साथ कैसा सलूक करती है, तुमसे घर में कितना काम कराती है, सास को कहना तुम्हारी बहू तो निकम्मी है, तुम्हारी तो, ये सिर्फ सास बहू की बात है। हर एक को, किसी भी दोस्त के पास चलेगा कि आप ये चाहते हैं कि हम लोगों की रजा की बात करें जिससे वो हमसे राजी हो जाए। सास की, अब कभी कोई किसी की जाके माँ की बुराई नहीं करता, क्यों? तुम्हें पता है कि ये सुनेगी नहीं, ये मुझसे लड़ेगी, क्यों जाके सास की करते हैं? क्योंकि जाके नंद की करते, सास के पास आके बहू की क्यों करते हैं, उसकी बेटी की क्यों नहीं करते? आपको पता है ये यही सुनना चाहती होगी, और हम सुनने वाले उनको शेयर देते हैं तो वो सुनाते हैं, अगर हम वहीं पे उनको शट अप कर दें तो वो कभी दोबारा जुर्रत ना करें। लेकिन हम सुनते रहते हैं और अपने घरों में आग लगाते, तो किसी के टोल लगाने की जरूरत ही नहीं, पूछने की जरूरत ही नहीं कोई कैसा रह रहा है कैसे, हमारे क्या मकसद है? कोई हमारे पास मशवरा लेने आए जरूर मशवरा दीजिए, लेकिन हर बार टोल लेना, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किधर है वो, क्या है, इनके घरों में क्या हो रहा है, कौन इनके घर आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सर्वेलेंस करना क्या हमारा काम है? हमसायों के घर में हर वक्त देखते रहना वो क्या कर रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, क्या हो रहा है, ये हमारा काम नहीं। ये टोल लगाने से अल्लाह ताला ने मना किया, सूरह हुजरात में तजस्सुस से मना किया, ये कुरान कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह और योम आखरत पर ईमान रखता हो, ईमान है ना हमारा, अल्लाह और योम आखरत पर ईमान रखता, उसको चाहिए कि वो भली बात कहे या खामोश रहे। कभी खामोश भी तो रह जाए, अगर मुझे नहीं पसंद आ रहा कि इन्होंने क्या पहना हुआ है तो क्या जरूरी है कि मैं बोलूं, क्या जरूरी है? अगर मुझे किसी का हाल हुलिया नहीं पसंद आता, किसी की कोई बात नहीं पसंद आ रही, क्या जरूरत है मुझे बोलने की? मुझे नहीं जरूरत, खामोश रहे। मुझे नहीं पसंद कि इसका ये तरीका मुझे नहीं पसंद, राह चलते लोगों के ऊपर कमेंट्स देते जाना। फिर इसी तरह गरूर और तकबर की बातें करना, दूसरों को हकीर जानने की बातें करना, बगैर तहकीक के बोलना, हमें पता भी नहीं होता, पूरी बात नहीं पता होती, ये नहीं पता होता कि वाकई ये बात ऑथेंटिक है कि नहीं है, ये सच भी है कि नहीं, सुनी सुनाई, इसने बता दी उधर उधर, उसने बता दी उधर। और अब तो माशाल्लाह हमारे पास ये व्हाट्सएप है जिसमें झूठी सच्ची सारी बातें आती हैं, उसको ये आगे फॉरवर्ड किए चले जाना, किए चले जाना, क्यों झूठ में हम भी शामिल हो रहे हैं, उन्हीं को आगे फैलाते जाना, सुना है ये हो रहा है, सुना है ये सुना है, क्या होता है, कहाँ से सुना, उसने सुना है, उसने सुना, उसने किसी और से सुना, हम झूठ के आगे एम्बेसडर बन गए, उसको लेके सफीर झूठ के आगे से आगे झूठी बातें फैला रहे हैं। फिर अपने गुमान से सिर्फ बातें बोलते रहना, सिर्फ ये हमारा गुमान है कि फलां ऐसा है फलां ऐसा है, सिर्फ अपने गुमान से बोलते जाना, उसमें भी कोई हकीकत नहीं, मुझे तो लगता है वो ऐसे है, मुझे तो लगता है ये हो गया, मुझे तो लगता है वो इसीलिए आई होगी, उसकी तो नीयत यही होगी, सिर्फ गुमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाज गुमान भी गुनाह होते, गुमान सिर्फ गुमान किए जाना ये भी गुनाह में इंसान को डाल देता है। इसी तरह बेबुनियाद बातें करते रहना, इसी तरह शकूक को शुभार डालना, इसी तरह किसी की बेजा तनकीद किए जाना, तनकीद करना, किसी को क्रिटिसाइज करते जाना बिला वजह, किसी के पीछे ही पड़ जाना, क्यों बिला वजह क्यों तनकीद करते रहे, क्या हमारे पास फालतू वक्त है? वह ये ना उन लोगों के मशगले हैं जिनके पास बहुत फारिग टाइम है, जब हम कहते हैं ना आओ कुरान सीखो ये, तो हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, टाइम कहाँ जा रहा है, कहीं तो जा रहा है, कोई फालतू एक्टिविटीज तो हैं जो हम करते हैं, ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे ही हम खाना बना रहे हैं, 24 घंटे हम सफाइयां कर रहे हैं, 24 घंटे हम बर्तन धो रहे हैं या हम कपड़े धो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे तो माशाल्लाह आप लोगों के पास हेल्प भी है, सब घरों में हेल्प है, तो फिर भी हम कहते हैं हम इतने मसरूफ है, किधर मसरूफ है, क्या फोन पे मसरूफ है, सहेलियों के साथ मसरूफ है, रिश्तेदारों के साथ गपशप में मसरूफ है, फेसबुक पे मसरूफ है, कहाँ मसरूफ है? तो ये सारी जो गीबतें चुगलियां, ये सारी जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें करना, शेखियां मारना, दूसरों के ऐप टटोलते रहना, बाज लोगों की ये आदत होती है कि वो कहीं पे भी जाते हैं ना, उनको सब चीजों में सिर्फ ये नजर आता है कि बुराई क्या थी वहां पे, भलाई वाली बात नजर ही नहीं आती, सिर्फ बुराई क्या थी उनके अंदर, तो मैं ढूंढूं तो सही ना कोई बुराई मिले, फिर जाके क्या बताऊंगी मैं, ऐसे लगता है कि उनका उनको ये जॉब मिली हुई है कि उन्होंने ये करना है कि जाके देखना है किसी के घर में कि बुराई किधर है, वो उठी ऐसे, वो बैठी ऐसे, उसने ऐसे बोला, उसने तो ढंग के कपड़े ही नहीं पहने हुए थे, उनके घर में तो गंद पड़ा हुआ था, वो तो ऐसे हैं। इतना दुख होता है जब किसी से सुनते ना ऐसी बातें, बहुत तकलीफ होती है, ये हम किन चीजों में लगे हैं, हमारे असलाफ देखें किस तरह से वो अपनी जिंदगियां गुजारते थे और जिंदगी को कैसे लेते थे, और हमने क्या मशगले अपनाए हैं। हमें तो ऐसे लगता है कि जैसे हमने पता नहीं यहीं पे बैठने का सोच लिया कि हमने यही दुनिया में रहना है और यही कामों में इन्हीं को करते रहना। जाना नहीं है क्या? जाना नहीं है? इक़तराबा लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुआरिदून। अल्लाह ताला ने फरमाया इन लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया, इनकी गफलतें ही खत्म नहीं होती, ये गफलतों में पड़े हैं। ये गफलत ही तो है कि मुझे याद ही नहीं कि मैंने जाना है, वरना तो मुझे जल्दी पड़ी हो कि मैं नेकियां करूं, अल्लाह मैं कोई खैर के काम कर लूं, अल्लाह इस जुबान से जिक्र ही कर लूं, मुझे क्या पड़ी हुई है। देखिए किसी के घर में झांकने का उसको ही वक्त मिलेगा जिसके पास और कोई काम नहीं, जिसको अपनी आखिरत भूली भी है, ये टोए लगाने का, ये दूसरों पे कमेंट्रियां करने का। ये वो कहते हैं ना, एक उंगली आप दूसरे की तरफ पॉइंट करते हैं तो कितनी आपकी तरफ पॉइंट हो रही है, चार। वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, और मैं कैसी हूँ? ये भी तो सोच लिया करो, मैं कैसी हूँ? वो ऐसी, वो ऐसी, वो ऐसी, वो ऐसी, सबका मैंने ठेका लिया हुआ, मैं कैसी हूँ? कभी मैंने अपने अंदर भी झांक के देखा, अल्लाह ताला ने क्या इसका हिसाब मुझसे करना है? मेरे से किसका हुआ? मेरा। लेकिन मुझे उनकी बहुत फिक्र है कि वो क्या कर रही है, वो घर के काम सही करती है या नहीं, वो बच्चों को सही देखती है कि नहीं, वो उस टाइम पे उठती है कि नहीं, इसकी मुझे क्यों इतनी फिक्र है, मुझे अपनी क्यों नहीं फिक्र। जिस दिन अपनी फिक्र लग गई ना, उस दिन सबकी फिक्रें भूल जाएंगी। दरअसल मसला यह है कि हमें अपनी फिक्र लगी ही नहीं हुई, हमें अपना कोई ख्याल ही नहीं है। आप दुनिया जहान के खैर ख्वाह है लेकिन अपने ही खैर ख्वाह नहीं है। आप वो दुनिया जहान को सुधारना है, अपने आप को नहीं सुधारना। लिहाजा अपनी फिक्र पहले कीजिए, अपने आप को संवारने की फिक्र पहले करें। ये ना हो कि कयामत के दिन हम खड़े हों और लोग हमारी नेकियां लेके जा रहे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि मुफलिस कौन है? तो सहाबा ने फरमाया कि मुफलिस हुआ जिसके पास माल नहीं है, दिरहम दीनार नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जिसने किसी को मारा, किसी की गइबत की, किसी की चुगली की, किसी साथ बुराई की, ये मेरी उम्मत का मुफलिस है। इसलिए कि उस दिन अल्लाह ताला उन सब लोगों को बुला देगा और वो सब लोग इसकी नेकियां लेके चले जाएंगे, और फिर जब इसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो उनके गुनाह इसके सर पे लाद दिए जाएंगे। तो आज तो जुबान मिली हुई है, आपके कंट्रोल में है, आप मेरी बात सुने ना सुने, आप कहें अच्छा ठीक है मुझे नहीं परवाह जो मर्जी कहते हैं, हमने तो ऐसे ही करना करते, ये आपके आज कंट्रोल में है। लेकिन एक दिन ना ये जुबान अल्लाह ताला अपने कंट्रोल में ले लेगा और ये बोलेगी, फिर ये बोल के क्या बताएगी, अल्लाह इसने मुझसे ये कराया, ये कलवाया, ये कहलवाया। ये जुबान हमारे ही खिलाफ बोलेगी, ये जुबान गवाही देगी कि इसने ये काम किए, ये स्किन बोलेगी, क्या करेंगे उस बात। लिहाजा अपने तो हमदर्द बने, सबसे पहले अपने से तो हमदर्दी करें कि मुझे अपने आप को आग से बचाना है, कहीं ये ना हो कि ये मुझे जुबान आग में ले जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जब हज्जतुल विदा पे गए थे, जो आखिरी खुतबा दिया, तो काबे की तरफ देख के फरमाया काबा तू बड़ा प्यारा है, तेरी बड़ी हुरमत है, बड़ी इज्जत है, हम सब इज्जत करते हैं ना, काबा हमारे लिए सबसे ज्यादा मुकद्दस है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेकिन एक मुसलमान की इज्जत, उसकी जान, उसका माल, ए काबा तेरे से भी ज्यादा हुरमत वाला है, काबे से भी ज्यादा हुरमत वाला। काबा तो हमारे लिए मुकद्दस है, मुसलमान की जान और माल कहाँ हमारे लिए मुकद्दस, और उसकी इज्जत तो हम वैसे ही हर रोज तार तार करते, किसी मुसलमान की इज्जत का हमें कोई ख्याल नहीं, लोगों को जलील करते, खड़े खड़े बेइज्जत कर देते हैं, जू मानी बातें करते हैं, जिसके डबल माने हो तेवरियां चढ़ा चढ़ा के देखते हैं। एक दफा आपसे सर में तेरी चढ़ाई तो अल्लाह ताला ने आबा साबा तवल्ला उतार दी, हम तेवरियां चढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं। क्यों हम अपनी जुबान की वजह से लोगों की जिंदगी को अजीरन बनाएंगे? याद रखें, अगर किसी के सजदे में उसके आंसू मेरी या आपकी वजह से टपक गए तो हमारा कुछ नहीं रहना। ये ना हो कि किसी की दुआओं के अंदर, किसी की आहों के अंदर, किसी की सिसकियों में हमारा नाम हो, कि कोई रो पड़े मेरी जात की वजह से। क्यों नहीं खैर बन जाते, क्यों नहीं हवा का वो झोंका बन जाते कि जहां जाए खैर फैलाए, जिससे बात करे खैर की बात करे, अच्छी बात करे, जहां से उठे लोग ये कहें कैसी प्यारी शख्सियत, लोग खुद हमारी तारीफ करें, लोग खुद हमें सराहें इस बात पे कि कितनी अच्छी थी, दिल खुश करके चली गई, क्या गया मेरा अगर मैं दो अच्छे बोल बोल दूं किसी के साथ, किसी से अच्छी बात कर दूं, किसी का दिल खुश कर दूं, मेरी नेकियां पता नहीं कहां से कहां तक बढ़ जाएं। किसी ने वो बद्दू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जिनका अंदर बाहर से और बाहर अंदर से नजर आता है। तो उसने उस बद्दू ने पूछा या रसूलल्लाह वो किसको मिलेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शीरी गुफ्तगू करे, मीठी बात, सबसे पहले क्या फरमाया मीठी बात, और खाना खिलाए और रोजे कसरत से रखे और उस वक्त नमाज पढ़े जिस वक्त लोग सो रहे होते, यानी तहज्जुद के नमाज, चार काम बताए लेकिन चारों में पहला क्या था मीठी बात। मीठी बात के लिए क्या भूखा रहना पड़ता है, मीठी बात के लिए क्या नींद से जागना पड़ता है, मीठी बात के लिए क्या खर्चा करना पड़ता है, कुछ भी नहीं, सबसे आसान लेकिन हमारे लिए क्यों मुश्किल बन गई। अंदर को साफ कर लेंगे ना जब, तो जुबान भी साफ हो जाएगी। असल प्रॉब्लम ना अंदर है। इस्लाह की तरफ आते हुए टाइम कम है, इस्लाह की तरफ आते कैसे इस्लाह करें, कैसे हम इस चीज से इन सारी चीजों को अपने अंदर से निकालें, अंदर को साफ कर लें। जिस दिन आपके दिल में किसी के लिए भी बुराई नहीं होगी ना, उस दिन आप देखेंगे कि आपकी जुबान से भी मीठी बात निकलेगी, और जब दिल बोझ और कीनों से भरे होंगे, उससे नफरत, उससे वो ऐसा वो ऐसा वो, कभी आप अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो दिल को साफ करें। वो बंदा जो आया था जिसने तो अपने जूते उठाए हुए आया था, आपसे सलम ने फरमाया था अब जो आ रहा है ये जन्नती है, तो सहाबी गए उनके घर पे रहने के लिए कि मैं देखूं क्या करते हैं, तो ऐसे कोई खास अमल तो नहीं करते थे। दो तीन दिन रहे, फिर उसके बाद उनसे पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में ये खुशखबरी दी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आपका क्या ऐसा अमल है। फरमाने लगे मेरा और तो कोई ऐसा अमल नहीं, सिर्फ ये कि रात को सोने से पहले सबको माफ कर देता हूँ, मेरे दिल में किसी के लिए कोई कीना नहीं है। सुभान अल्लाह, जब ये कीना ही नहीं होगा ना, आप देखेंगे आपकी जुबान खुद ब खुद पाक हो जाएगी, हर एक आपको अच्छा लगने लगे, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये अच्छा गुमान ही आपकी इबादत है, हर एक अच्छा लगने लगे। और दूसरी कैसे आप कर सकते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कोई तुम में से मोमिन नहीं हो सकता, कोई मोमिन नहीं हो सकता, कसम खा के फरमाया कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक के अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए करता है। अब हम सोचते हैं पता नहीं चीजों की बात हो रही है कि मैं जो अपने लिए सूट पसंद करूं वही उसके लिए करूं, जो अपने लिए जूता पसंद करूं वही, नहीं ये नहीं बात हो रही, सिर्फ ये चीज नहीं है, बल्कि क्या आप पसंद करते हैं आपकी चूलियां लोग करें, आप पसंद करते हैं आपके घर की बातें लोग करें, आप पसंद करते हैं लोग आपकी टोएं लगाएं, आप पसंद करते हैं आपकी कोई बुराइयां करें, आप पसंद करते हैं आपके घरों में कोई फूट डाले, क्या आप अपने लिए पसंद करते हैं? नहीं करते ना, कोई भी नहीं करता। तो दूसरे के लिए भी ये पसंद ना करें, फिर उसके लिए भी वही पसंद करें जो अपने लिए करते। अगर आपके आप अपने लिए नहीं पसंद करते कि लोग मुझे बुरा कहें, लोग मेरी ऐब बयान करें, लोग मेरे ऐब ढूंढें, तो आप क्यों लोगों के ढूंढते, आप भी लोगों के मत ढूंढें। अपने लिए नहीं पसंद करते कि मेरे घर की कोई बुराई जाके लोगों को बताए, तो फिर आप लोगों को क्यों बताते हैं, तो उसके लिए वही पसंद करें जो अपने लिए पसंद करते, तब आप मोमिन बन जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आसान है मोमिन बनना, लेकिन इस पे अमल कीजिए, हर एक आपको अच्छा लगने लगे, हर एक अच्छा है, अच्छे गुमान के साथ दूसरे से मिले, ये नहीं कि हाथ दूसरे से मिला रहे हैं और दिल के अंदर ये हो कि कितनी बुरी है, पता है मुझे ये कैसी है, नहीं, साफ दिल के साथ आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी साफ सुथरी हो जाएगी। आप देखेंगे कि जब आप दुनिया से जाएंगे भी तो आपका जिक्र खैर होगा, अल्लाह ताला आपका जिक्र खैर बाकी रखेगा। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की तो हमने ये बात कर ली, लेकिन ये जल्दी शैतान बुलवा देगा, क्योंकि वो क्या चाहता है, लोगों में फूट डलवाना। तो जब शैतान दोबारा आए हमारे पास, इस बात को याद कर लीजिएगा हमने क्या सुना था, और बार बार ये बातें सुनते रहिए, उससे क्या होगा, दिल की धुलाई होती रहेगी, दिल दोबारा साफ हो जाएगा। क्योंकि तो हम इंसान है ना, हम भूल भी जाते हैं, शैतान भी हमारे साथ लगा हुआ है, शैतान हमसे बुलवा भी देता है, वसवसे भी डालता है हमारे अंदर, बदगुमानियां भी डालता है। अब यही हमारी जिहाद है, यही हमारी जंग है शैतान के साथ, कि उसकी बात को नहीं हमने मानना, और फौरन समझ जाना। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जब मुत्तकीन के पास शैतान आता है ना कोई वसवसा डालने के लिए, फौरन पहचान जाते कि ये शैतानी बात है। तो आपने पहचान जाना है कि ये शैतान ने मुझे मेरे दिल के अंदर डाली है, मैंने नहीं इस बात पे अमल करना, मैंने ये ऐसा बोलना, मैंने अपने दिल को साफ रखना। करेंगे ना इंशाल्लाह, ताकि आप यहाँ से जाएं तो कुछ अच्छाई लेके जाएं, ठीक है। सिर्फ हमारा बैठना सिर्फ इसलिए ना हो कि बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट हम आए और बैठ गए, क्योंकि हमारा बैठना इसलिए हो कि हम यहाँ से कुछ भलाई अपने साथ लेकर जाएं, कुछ सामान लेकर जाएं जो हमारे आगे काम आ जाए। अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए, बैठना कबूल फरमाए, हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا غفور رحيم رب. يا رب العالمين هم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. يا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے. يا اللہ جو حقوق العباد میں ہم نے کمیاں کی ہیں اور اللہ تیرے حقوق میں جو ہم نے کمیاں کی اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. يا رب العالمين جو ہماری زبان کے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے. یا اللہ جو ہم نے لوگوں کی ضدیں چگلیاں کسی کے ساتھ جھوٹ کسی کے ساتھ کوئی برائی کی ہے یا رب العالمین تو ان لوگوں کو اپنے خزانوں میں سے عطا فرما دے اور ہماری بخشش فرما دے ہماری بخشش فرما دے. یا رب تو بے شک بڑا معاف فرمانے والا ہے. یا اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ تیری بخشش تیری رحمت کہ کوئی حد نہیں. یا رب العالمین تو بڑی وسعتوں والا. یا رب ہم فقیر اور کمزور لوگ ہیں. یا رب العالمین ہم وہ لوگ ہیں جو پھسل جاتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں معاف کر دینا. پتہ نہیں کتنے گناہ کر چکے ہیں اب تک. یا رب العالمین ہمیں تو شمار بھی نہیں کہ ہم کیا کچھ کر چکے ہیں. زبان سے کتنی ہم نے غلط باتیں نکال دی اور ہمارا مقام کیا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ ہم نہیں جانتے. تو ہمیں معاف فرما دینا. ہمیں معاف فرما دینا اللہ. ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم شرمندہ ہیں اپنی زندگی پر. یا اللہ جو لاشعوری میں گزاری. یا اللہ جو جہالت میں گزاری. یا اللہ تعالیٰ جو گناہ علم کے باوجود بھی کیے. یا رب العالمین تو ان کو بھی معاف کر دینا. اپنی رحمت سے معاف کر دینا. یا رب نہ اس دنیا میں ہمیں سزا دینا نہ آخرت. اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ کرنا. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ کرنا. یا رب العالمین تو تمام جہانوں کو چلانے والا پالنے والا اللہ ہم تیری بہت ہی ادنی سی مخلوق اور بہت ہی کمزور سی بندی. اللہ या अल्लाह हम पे रहम फरमा देना, या रब्बुल आलमीन जो हिसाब किताब का दिन वो हमारे लिए आसान फरमा देना, या अल्लाह ताला उस दिन हमसे राजी हो जाना, या अल्लाह हमारी बख्शिश कर देना, या अल्लाह ताला जितनी जिंदगी बाकी रह गई है अपने दीन के रास्ते पर चलाना, अपनी फरमा बरदारी में गुजारने की तौफीक अता फरमाना, अल्लाह जब मौत का वक्त आए तो जानकनी के अजाब से बचाना, या अल्लाह मौत की डुबकियों और बेहोशियों से बचाना, या अल्लाह कब्र के अजाब से बचाना, या अल्लाह कब्र में कुरान को हमारा साथी बना देना, या अल्लाह कब्र की तन्हाई में कुरान को हमारा साथी बना देना, हमारे लिए नूर का बायस बना देना, या रब्बुल आलमीन जिस दिन हशर में उठे अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब फरमाना, या अल्लाह ताला पता नहीं क्या क्या गुनाह कर चुके हैं जिंदगी को ऐसे ही इसे हकारिया में गुजरी, या रब्बुल आलमीन तो अपनी रहमत से माफ कर देना, या अल्लाह अपने हर किसान के अजाब से बचाना, अल्लाह जहन्नुम की आग से बचाना, या अल्लाह ताला मीजान में जब अमल तुलने लगे तो हमारी नेकियों को बढ़ा देना, हमारे गुनाहों को हल्का कर देना, अपनी रहमत से अल्लाह हमारी पर्दा पोशी फरमाना, हमारी पर्दा पोशी फरमाना, या अल्लाह जमीन के ऊपर भी इज्जत के साथ रखना, जमीन के नीचे भी इज्जत से लेके जाना, या रब्बुल आलमीन तू बड़ा करीम है और तू बड़ा रहीम है, अल्लाह तू गफूर है, अल्लाह तू अपने बंदों पे बड़ा रहम करने वाला है, अगर तू हमें पकड़ ले हमारे गुनाहों पे तो हम में से कोई भी जमीन पे चलता हुआ नजर ना आए, या अल्लाह तो तेरी रहमत है कि आज तक हम चल रहे हैं, और तेरी रहमत के सहारे ही अल्लाह ताला हमारी अगली जिंदगी में गुजरनी है, या अल्लाह अपनी रहमतों को हमसे मोड़ ना लेना, या अल्लाह ताला तू अपनी रहमतों के साए में हम सबको रखना, हमारे घरों को रखना, हमारी औलादों को नेक बना दे, हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, सबका जारिया बना दे, या रब्बुल आलमीन हमारी औलादों को हमारी नेक नामी का सबब बना, हमारी इज्जतों का सबब बनाना, या अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाना, उनके ईमानों की हिफाजत फरमाना, अरे नस्लों में मुत्तकीन के इमाम उठाना, अल्लाह तआला मुत्तकीन के इमाम उठाना, अल्लाह हम तो नहीं रहने वाले, हम तो अपनी जिंदगियों में भी अपनी औलादों की हिफाजत नहीं कर सकते, पर अल्लाह तो हिफाजत करने वाला, तू अल हफीज है, या रब हमारी औलादों की और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा, हमारी नस्लों में भी कोई ना कुफर पे पैदा हो ना कुफर पे उसको मौत आए, या अल्लाह ताला मुत्तकीन के इमाम उठाना, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रतु आयुनि वाज़अलना लिल्मुत्तकीना इमामा, انت ولي في الدنيا والآخرة توفنا مسلم ولحقنا بالصالحين، اللہ صالحین کا ساتھ عطا فرمانا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، صالحین کا ساتھ عطا فرمانا یا رب، یا رب اپنے نبی کے حوض کا پانی نصیب فرمانا، یا اللہ اس دن ہمارے اوپر وہ فخر کریں اپنے امتی ہونے پہ، یا اللہ اس دن ان کے ہاتھ سے ان کے حوض کا پانی نصیب فرمانا، یا رب العالمین ان کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانا، یا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں شامل فرمانا جو دن اور رات تیرا دیدار کرنے والے، اللہ اپنی دیدار کی نعمت سے ہمیں محروم نہ کرنا، یا رب العالمین جہنم سے بچا کے جنت میں داخل فرما دینا، یا رب جہنم سے بچا کے جنت میں داخل فرما دینا، اس رات میں سے بجلی کی تیزی سے گزار دینا، اللہ اس دن ہمارے نور کو مکمل فرما دینا، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، یا اللہ دنیا کے بھی تمام مصائب سے پریشانیوں سے محفوظ رکھا اور آخرت کے بھی تمام عذابوں سے محفوظ رکھنا، ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما دے، یا اللہ جن کی بچیوں کے بچوں کے بچیوں کے اللہ تعالیٰ رشتوں کے مسئلے اللہ تعالیٰ تو حل فرما دے، اللہ نیک جوڑے بنا دے، یا رب العالمین جن اولاد سے محروم ہے اللہ تعالیٰ تو ان کو نیک صالح زندگی والی صحت والی ایمان والی اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کو اولاد نرینہ کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ تو ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، یا رب تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ تو عزتوں کا مالک ہے، اللہ ہمیشہ عزتوں کے ساتھ ہی رکھنا، یا رب العالمین اوپر والا ہاتھ دیے رکھنا، محتاجیوں سے محفوظ رکھنا، بیماریوں سے محفوظ رکھنا، رزیل بڑھاپے سے محفوظ رکھنا، یا رب العالمین ہمارے والدین ان کے اوپر رحم فرمانا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ताला उनको दूसरों पे एड़िया रगड़ने से महफूज रखे, अंकल के फिर जाने से महफूज रखे। हमारे वालदैन के लिए और हमारे असातिज़ाए कराम के लिए सबका जारिया बनाना, हमारी औलादों को हमारे लिए सबका जारिया बनाना। या रब्बुल आलमीन, जिन्होंने इस मजलिस को मुनक्किद करने में अपना हिस्सा डाला, अल्लाह ताला इसका अजर अज़ीम उनको अता फरमाना। या अल्लाह अपने खजाने से भर भर के अता फरमाना। या अल्लाह इस रहमा मरकज में बरकत अता फरमाना। अल्लाह ताला इससे हिदायत का नूर दुनिया जहान में फैले। या रब्बुल आलमीन, इस जगह को आबाद रखना। या अल्लाह इसको सदका जारिया बना देना। या अल्लाह जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला उन सबके लिए सदका जारिया बना देना। या अल्लाह ताला अल-फुरकान जो सेंटर बनाया इन्होंने सिस्टम में, या अल्लाह ताला उसको भी बरकत अता फरमाना, उससे भी हिदायत का नूर निकले और हर जगह फैल जाए। या अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाना इन सेंटर्स, इन मराकज़ को जो दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह महफूज रखना। या अल्लाह हम सब को, हमारी इदारे हैं, इन सब को हासिदों के हसद से महफूज रखना, नज़र बद से महफूज रखना। अल्लाह दीन की बेहतरीन खिदमतें हम सब से ले लेना। या अल्लाह ताला हम सब से दीन की बेहतरीन खिदमतें ले, हम सब को खलूस अता फरमाए, इखलास अता फरमा, रियाकारी से बचा ले। या अल्लाह हमारे अमल के ज़ाया होने से हम सबको बचा लेना। या अल्लाह ताला तो हम सब का हामी ना से रो जाना। या अल्लाह हम सब का हामी ना से रो जाना, हम सबको आफियत अता फरमा, दुनिया में भी और आखरत में भी आफियत अता फरमा। या अल्लाह जिसकी भी जो परेशानी है उनको दूर फरमा दे, मसाइल को हल फरमा दे। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين